किलोमीटर, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। खुदा मदद करे।
सब ठीक हो जाएगा सईद भाई, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा।
मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, मायूस हो जाएंगे बेचारे।
हाँ, आज कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन सब्र करो, सही मौका देखकर हम दोनों साथ मिलकर उन्हें बताएंगे, ठीक है?
देखो, हाफिज ने आनी और बाबा के बारे में कुछ कहा है क्या?
इत्तेफाक से हाँ, मैंने एक बार दोबारा किया अपने महबूब का दीदार, कैसे शुक्र अदा करूं ऐ मेरे परवरदिगार। रास्ते की मुश्किलात से मत परेशान हो ऐ दिल, एक मर्द शुजा कभी डरता नहीं रुकावटों से। लो, पहुंच गए। सलाम, कैसे हो?
मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ?
खुश आमदी।
अल्हम्दुलिल्लाह।
बस बस, जहमत ना करें।
इसमें जहमत क्या है, मैं रख देता हूँ, मेरा काम है।
ये लीजिए,
इसकी कोई जरूरत नहीं। आपका खादिम हूं।
हसन,
मामू, मामा।
ए हसन,
मामू।
कोई है?
मामा,
मेहमान नहीं चाहिए।
अब्बास, ए माँ।
ए अम्मी जान,
अम्मी जान,
अम्मी जान। हाजी साहब, आप कैसे हैं?
सलामत रहो इंशाल्लाह। मुस्तफा साहब कैसे हैं?
आइए, खुश आमदीद।
आइए।
वाह वाह,
अम्मी जान, आप पर कुर्बान जाऊं।
मेरे प्यारे बेटे, खुदा हिफाजत करे।
खुश हो ना, अब तो तुम्हारा बेटा आ गया है।
आपकी बहुत याद आती थी।
खुदाया, तुम पर कुर्बान जाऊं, आप भी तो खुश हैं।
ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमें बताया नहीं कि आ रहे हो।
खुदा की कसम बाबा जान, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने अपना काम कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए।
तुम्हारा हक है।
और गुलाम रजा पानी की क्या खबर?
अरे बाबा, पानी की और क्या खबर, एक महीने में लवान का काम पूरा होते ही खार्क लौट जाएंगे हमेशा की तरह।
फिर से पानी के बीच?
पानी के बीच।
खुदा हिम्मत दे। आप ही जान, मेरे दोस्त को परेशान मत करना।
उनसे पूछो मिलते भी हैं क्या, ये तो तुम्हारे कदम की बरकत है कि यहाँ हैं।
वाह हसन मियाँ, जरा देखने तो, माशाल्लाह, तुम तो लंबे और पहलवान हो गए हो। क्या अपने पापा की तरह शर्मा रहे हो?
हसन मामू है।
कुर्बान जाऊं, माशाल्लाह, लंबा हो गया है, मामा को घात में डाल रहा है।
2 साल से मामू को नहीं देखा तो शर्मा रहा है।
एक मिनट,
उसकी तरह उसका मामू भी शर्म के मारे कुछ लोगों का हाल नहीं पूछ रहा है।
ठीक है ना?
वो खुद भी ठीक है और उसके माँ बाप भी।
खुदा का शुक्र,
मैंने बता दिया है कि तुम आ गए हो।
ये हुई ना बात, शुक्रिया।
और बेटा कैसे हो तुम? सलामत रहो, जहमत की, इंशाल्लाह गुलनार की शादी में हम भी
आएंगे। कोई बात नहीं, शुक्रिया। वहाँ देखो और वहाँ देख कर मुस्कुराओ।
मेरा मानना है अगर मलिहा ना आए तो बेहतर है, उस वक्त अब्बास सारी बातें समझ जाएगा। अगर अब भी वो बात उसके जहन में होगी तो वो समझ जाएगा कि सारी बातें खत्म हो गई हैं, और इस तरीके से किसी को बुरा भी नहीं लगेगा।
उस बात को 2 साल बीत चुके हैं, दोनों के हालात भी बदल गए हैं, अब क्या पता दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं या नहीं। आज मलिया भी पहले से समझदार हो गई है और अब्बास भी। इसके अलावा अब मलिया बच्ची तो नहीं रही।
आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए? फूफी के घर नहीं जाना है क्या?
क्यों नहीं बेटी, अभी तैयार हो रहे हैं।
आपकी मोहब्बत ही की आप आए। मोहम्मद जान सलामत रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम्हारी शादी में आएंगे
इंशाल्लाह। शुक्रिया, सलामत रहें।
शुक्रिया। या अल्लाह, कोई है क्या?
आ रहा हूँ।
आओ।
सलाम
अलैकुम। कैसे हो भांजे?
आप कैसे हैं? आप कैसे हैं?
कैसे हो अब्बास?
खुशामदीद। खुशामदीद।
ठीक तो हो? सलाम।
सलाम अलैहा। कैसी हो?
ठीक है, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, तुम खुद कोई फूल से कम नहीं हो। जहमत की बहुत शुक्रिया।
कैसी गुजरी?
तुम्हारी जगह खाली थी, बाकी सब ठीक था।
हम लोग भी बहुत याद किया करते थे।
मैं उससे ज्यादा।
शुक्रिया।
खुशामदीद। आओ अंदर आओ।
मामू जान, माने आने का शुक्रिया। मलिहा जान, तुम खुद कोई फूल से कम नहीं हो। ज़हन पर छा गई है बस, बिल्कुल एक बुझती हुई शमा की तरह जो दोबारा भड़क उठती है। मुझे लगता है इश्क किसी को कहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता अब्बास। इन 2 सालों में मैंने भी अपनी जिंदगी के मुस्तकबिल के लिए कुछ मंसूबे बनाए हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं, शायद ईरान से 2 साल की दूरी ने तुम्हें मेरे लिए बदल दिया हो और अब तुम मेरे बारे में नहीं सोचो।
तुम्हारा जुर्म क्या है? अमानत में खयानत, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ए ओ भाई साहब, मैंने अपने बेटे को अमानत के तौर पर तुम्हारे हवाले किया था, वरना मेरा दिमाग फिरा था कि मैं दुनिया के उस तरफ उसे अकेले जाने देता।
अब आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए हाजी साहब।
गुस्से नहीं हो, उसका मुंह तो देखो, मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो। ये लो, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे हाजी इस्माइल के बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये इसी की वजह है।
लेकिन हम अभी बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हाजी साहब। हमने एक दूसरे के साथ बहुत बातें की, मशवरा किया, तहकीक की, उसकी और उसके घर वालों की। खुदा की कसम, सब अच्छा था और अच्छे से हो गया। हम लोग डर रहे थे कि अगर आपको फोन करेंगे तो आप नहीं मानेंगे और हमें मजबूर होकर पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। उसके अलावा हाजी साहब, सईद को जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से इश्क हुआ था। अपनी जिंदगी के पहले इश्क के साथ क्या करता, कैसे भूल जाता?
ऐसा यानी तुम भी इसके साथ मिले हुए थे तो जरूर शादी में इसके बगल में खड़े हुए थे। हां, अब मैं कैसे लोगों के सामने अपना सर उठाऊं और कहूं कि मेरे बेटे ने एक काफिर फिरंगी के साथ शादी की है? अगर लोगों को पता चल जाएगा तो केस बेकरी में कदम रखेंगे, तुम ही बताओ।
इससे क्या राबता?
नहीं कहो, इससे क्या राबता? ला इलाहा इल्लल्लाह। राबता यह है कि वो इस बेकरी में जिस चीज को हाथ लगाएगी नजीस हो जाएगी, ये राबता है। क्या ये ठीक है?
हद करते हैं। लेकिन हाजी अब्दुल्ला, इससे क्या राबता है? किसे पता है खुदा का अजीज कौन है, काला है, लाल है, गोरा है या पीला? इसके अलावा आनी भाभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई, अब क्या मुश्किल है?
अभी मुसलमान है?
हाँ,
हम जो पहले से मुसलमान थे, हाल ये है तो जो पहले काफिर थे उनका हाल क्या होगा?
काफिर नहीं थी, मसीही थी।
देखो, तुम अपना मुंह बंद रखो।
हाजी साहब आराम से।
उससे कहो चुप रहे।
हाँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। आप हमसे बड़े हैं, बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा और फिर चला जाऊँगा। हमें फतवा जारी करने का कोई हक नहीं है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़ सईद।
सईद एक मिनट, आओ आओ बेटा। बताओ ये तोहफा कैसा है? इसे लोगों के सामने ले जा सकते हैं या नहीं, कि शर्मिंदगी होगी? ये क्यों इस तरह है?
किस तरह है?
सिर क्यों खुला है?
मुसलमान होने से पहले की है।
अब हिजाब करती है?
हाँ।
ये लो, बिल्कुल ताजा है। अब ये बताओ, वो ईरान कब आ रही है?
अगर बेहतरी होगी तो तुम्हें भी कोई स्कूल मिल जाएगा जहाँ पढ़ा सको।
कज़वीन के अतराफ 100 किलोमीटर घूम ली, कहीं नहीं मिली।
हमेशा हम जो चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अच्छी है और होनी चाहिए, हमारी बेहतरी में नहीं होती।
तुम्हारा मतलब क्या है?
शायद मुझे भी शादी के बाद अपना काम छोड़ना पड़ेगा।
तुम पागल हो गई हो? लेकिन क्यों? किसी ऐसे के साथ शादी करो जिसे तुम्हारे काम करने पर एतराज नहीं हो। सही कह रही हूँ, तुम पढ़ी लिखी भी तो हो, तुम्हारे खानदान की माली हालत भी तो अच्छी है, तुम्हारे खानदान का नाम भी तो अच्छा है। कोई भी रिश्ता लेकर आए तो जल्दी से हाँ नहीं करना।
तुमने जितनी भी चीजें कही अहम है, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना पता है, या तो तुम्हें बहुत खुशफहमी हो गई है या तुम दीवानी हो गई हो।
हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं दीवानी हो गई हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनो। पहली क्लास वाले, उस मर्द के पास अनार है। छोटी मीम, बड़ी मीम। इस जुमले को 10 मरतबा लिखो। दूसरी क्लास वाले, ये ड्राइंग जो मैंने बनाई है उसे देखकर बनाएं। अगर किसी के पास कलर पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरी क्लास वाले इस सम को सॉल्व करेंगे। चौथी क्लास वाले ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन का सम करेंगे। और पांचवी क्लास वाले हसन, माँ की नज्म को किताब में देखकर पढ़ो और बाकी सब उसके पीछे दोहराओ।
माँ,
माँ,
ऐ मेरी प्यारी माँ, मेरी जान तुम पर फिदा।
ऐ मेरी प्यारी माँ, मेरी जान तुम पर फिदा।
तुम्हारी मेहरबानी और मोहब्बत पर कुर्बान।
तुम्हारी मेहरबानी और मोहब्बत पर कुर्बान।
कभी हमें तुम्हारी मोहब्बत से,
कभी हमें तुम्हारी मोहब्बत से।
Thank you. एक मिनट डॉक्टर हाजियान, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, ठीक हो?
माफी चाहता हूँ देर से पहुँचा।
कोई बात नहीं,
आप लली की तबीयत के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहती थी?
हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात है जो बताना चाहती थी। देखिए लैली कभी कभी किसी बात पर एक खास तरह का रिएक्शन देती है, यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कन में भी फर्क आ जाता है।
तो ये अच्छा है या खराब है?
नहीं, परेशानी की बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ही। लेकिन अगर हमें ये पता चल सके कि कौन सी बातें हैं जो उसकी हालत बदल देती हैं, तो हम उसके हिसाब से इलाज में तब्दीली ला सकते हैं।
मैं इतने दिनों से हमारी जिंदगी और हमारे मुस्तकबिल के बारे में ही बात कर रहा था।
मुझे पता है, वो भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन इसके अलावा जब भी मलीहा हिकमत तुम्हारी बीवी की दोस्त लैली के पास होती है, तब उसकी हालत बदल जाती है।
माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, यानी हमें क्या करना होगा?
करमी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और मलीहा हिकमत की बातों में लैली के बारे में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लैली की हालत बदल जाती है। इस बात पर और गौर करें।
शुक्रिया डॉक्टर साहिबा,
गुड लक, खुदा हाफिज।
मुश्किल ये है कि मलीहा अब 2 साल पहले वाली लड़की नहीं, अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए काम करती है। अब वो टीचर बन गई है और खुद के पैरों पर खड़ी हो गई है। बचपन से उसकी यही तमन्ना थी कि वो टीचर बने, और वो बन गई। अब सभी चीज़ें बदल गई हैं सईद।
ये जो तुम बता रहे हो उसके आसपास की बातें हैं, खुद क्या, क्या वो खुद बदल गई है?
इंसान को उसके आसपास के माहौल से जुदा नहीं किया जा सकता। अब वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है कि शायद हो सकता है कि उसे हासिल करने के लिए मुझसे शादी करने से मना कर दे। मेरे साथ शादी करना शायद उसकी नजर में मकसद तक पहुंचने के लिए रुकावट बने।
सईद भाई, इसे रख दो तो।
तुम खुद क्या सोच रहे हो, उसके रास्ते में रुकावट हो?
मेरी हालत तुम बेहतर जानते हो। हमारी जिंदगी खुद हमारे हाथ में नहीं, हम फौज में हैं। मुमकिन है कि किसी भी वक्त किसी मिशन पर डाल दे और भेज दे मुल्क के किसी कोने में, किसे पता है?
अब्बास, अगर वो तुम्हें नहीं चाहती है और तुम्हें मनफी जवाब दे तो क्या करोगे?
सख्त है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं चाहती तो कभी उसकी बात नहीं करूंगा।
और अगर तुम्हें चाहती है लेकिन तुम्हारे काम को नहीं?
परवाज हम दोनों का इश्क है सईद, नहीं है क्या? जमीन को छोड़े बगैर आसमान में जा सकते हैं? मुमकिन नहीं।
हाँ, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि जमीन पर कोई होना चाहिए।
हाँ सही है, चाहता हूँ जब भी वापिस आऊँ।
Okay, I get it. देखो तुम्हारा दिल क्या कहता है, ये चीजें 2 दुनी 4 की तरह नहीं है। अगर मैं भी ऐसे हिसाब किताब करता तो कभी आनी के साथ शादी का सोचता तक नहीं। कोई सोच भी सकता था सईद को जस्से पर एक लड़का कजवीन से टेक्सास के लवाक शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी के लिए उसका हाथ मांगता है और वो भी बड़ी आसानी से हाँ बोल देती है।
हाँ, तुम्हारे नसीब अच्छे थे मेरे भाई, मेरे अलावा कोई नहीं था जिससे तुम्हारी तहकीक कर दी।
सईद भाई, इसे भी रख दो तो।
लो मुझे दे दो,
वहां सामने रख दो। अब्बास, तुम्हारे मामू के घर जाओ और तुम्हारी मुमानी के साथ बैठकर खुल के बातें करो। तुम ही तो कहते हो कि हमेशा मुश्किल को उसकी जड़ से हल करनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अकल होती तो समझ जाते कि इसका दिल जीतना चाहिए। अगर मुमानी राजी हो जाए तो मामू और उसकी बेटी ऑटोमेटिक ओके हो जाएंगे।
तो मुमानी से बात करूं?
हाँ,
बात तो सही है, बहुत अच्छा रास्ता बताया सईद भाई। तुम्हारी शादी में हिसाब चुका दूंगा इंशाल्लाह।
लवाक में तुमने एक बाप का हक अदा किया तो मैंने सोचा कि भाई का हक अदा करो थोड़ा सा।
तुम्हारे बाबा और फातिमा आपा ठीक हैं?
उन्होंने आपको सलाम कहलवाया है जी, ठीक है।
ये लो।
आपका बहुत शुक्रिया। खुदाया तुझे से उम्मीद है। क्या कहूँ क्या कहूँ मुमानी जान कि मैं यहाँ हूँ कि आपके साथ।
सलाम
अलैकुम अलिया, तुम कैसी हो, खैरियत से हो?
जी शुक्रिया। फिलहाल इजाजत दे।
शुक्रिया, सलामत रहे। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है कि मलिया अपने काम में मसरूफ हो गई है।
हाँ सच में, उसे उसका काम बहुत पसंद है।
मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मोमानी जान। मैं चाहता था उस बारे में आपसे बात करूं मैं कि।
देखो अब्बास बेटा, मुझे नहीं पता किस बुनियाद पर यह बात अब तक खींची जा रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले ही तुम्हें हमारा नहीं का जवाब मिल गया था।
सही, लेकिन मुमकिन है 2 साल पहले में और अभी में बहुत सी चीजें बदल गई हूँ।
इन 2 सालों में कोई भी चीज बदली नहीं है, ना हमारी जिंदगी के हालात और ना ही तुम्हारा काम।
लेकिन खुद मलिहा ने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
अगर मलिहा ने कभी कहा हो कि उसका टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने से पहले वो शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम इंतजार कर रहे थे, तो मैं माफी चाहती हूँ, ये गलतफहमी थी।
आपने दिल की बात कर ली मुमानी जान, मुझे इजाजत दें कि मैं भी अपने दिल की बात कह सकूं। ये 2 साल जो मेरे लिए 2 सदियों की तरह गुजरे, सच्ची हमेशा मलिहा के बारे में सोचता था। आप मुझे पहचानते हैं कि मैं बड़ा चला के बात करने वालों में से नहीं हूं। मुझे लगता है मैं उसे समझता हूं, इसी के लिए उसका हाथ मांगा है। हम दोनों में कुछ फर्क जरूर है, सही है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ फर्क होता है, लेकिन मुझे लगता है हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि अपनी आरजुओं के साथ एक खुशहाल जिंदगी के लिए एक दूसरे की मदद करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, सही है, शायद उससे ज्यादा। जो इस दुनिया में सख्तियों का सामना नहीं करता है तो उसकी वो दुनिया सख्त होती है। अगर मलिहा खुद अपनी जबान से कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है, मैं कभी ये बात नहीं करूंगा। आपके जवाब का इंतजार करूंगा, माफी चाहता हूं, तकलीफ दी।
कोई बात नहीं बेटा,
खुदा हाफिज।
जब मेरी माँ का जवाब सुना और खाली हाथ खुदा हाफिज कहा, तो सच पूछो तो मेरी माँ के मुसलसल मना करने से मैं नाराज हो गई, क्योंकि अब्बास के बार बार आने और हौसला नहीं हारने की और कोई वजह नहीं हो सकती थी सिवाय इश्क के।
एक मिनट मलिया साहिबा,
मैं आईसीयू गया था, वहाँ आप नहीं थी तो यहाँ आ गया। कुछ दिनों से मेरे जहन में एक सवाल मुझे खाए जा रहा है, कैसे इस किताब का मौजू और आपके शोहर की जिंदगी इस कदर लैली के लिए आम हो गई।
इंशाल्लाह वो खुद आपको बताएगी।
लैली ने इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक लफ्ज तक नहीं कहा था। अगर उसके साथ कोई अजीब हादसा पेश आया था उसने मुझे तो बताया होता।
आप क्यों सोच रहे हैं कि उसके साथ कोई अजीब हादसा पेश आया होगा?
आप उसे ठीक से पहचानती नहीं है। मेरा आपकी आपके शोहर की तौहीन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन लैली का कोई रब्त इस किताब से जो लिखने वाली थी नहीं था, यानी आपसे कैसे कहूँ, मुझे लगता है कि उसे इस तरीके के मौजूआत पर ईमान नहीं था।
देखिए करमी साहब, मैं भी आपकी तौहीन करने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन मेरे ख्याल से आपने लैली को ठीक से नहीं पहचाना है। अगर इजाजत दें तो मैं समझाती हूँ। अब्बास के शहीद होने के बाद से बहुत से लोग मेरे पास उनकी फिल्म लेने के लिए, फोटो, इंटरव्यू, सीरियल के लिए इजाज़त और दूसरी चीज़ें, लेकिन सच पूछो तो लैली उन सबसे अलग थी। पहली बार जब वो मेरे दफ्तर में आई मुझे इंटरव्यू देने का बिल्कुल मूड नहीं था।
जी मैडम ठीक है।
पहले ठीक से सोच लो और जब भी फैसला कर लो यहाँ आ जाना, साथ में मिलकर बात करेंगे, ठीक है?
ठीक है मैडम, इजाजत है।
खलीली ना मैं किसी को कुछ बताऊंगी ना तुम किसी से कुछ कहना। और सुनो, फिलहाल मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ बात करो, फोन पर भी नहीं, ठीक है?
मैंने कभी उसे फोन नहीं किया।
बहुत अच्छी बेटी, मुझे पता है आप कभी भी फोन नहीं करना। जाओ पहले आंसू पोंछ लो।
माफ कीजिए मलीहा हिकमत,
मैं ही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, मैं लैली गफूरी हूँ।
जी फरमाइए।
जी बताती हूँ, इजाजत है?
आइए तशरीफ लाइए। मैं हाजिर हूँ।
शुक्रिया। सच पूछे तो मैं आपको जहमत दे रही हूँ ताकि आपका इंटरव्यू ले सकूँ, क्योंकि मैं आपके शौहर की ज़िंदगी पर तहकीक कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो कुछ देर बात कर सकते हैं?
मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर सकती, लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत मसरूफ हूँ।
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी।
मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं, तुम उनमें से किसी से भी इस्तेफादा कर सकती हो।
मेरा काम उनसे बिल्कुल अलग है, यानी कि ये एक पैकेज है जिसमें किताब और सीडी शहीद बाबाई की जिंदगी पर है। मेरा दिल चाहता था कि
मैं समझती हूँ, तुम्हें मेरे पुराने इंटरव्यू से भी काफी चीजें मिल सकती हैं।
लगता है सच में मैं आपको परेशान कर रही हूँ।
ऐसा नहीं है। कुछ किताबें हैं जो शहीद।
शुक्रिया, आप जहमत ना करें।
उस दिन लैली खाली हाथ वहां से लौट गई। मैंने सोचा उसे बुरा लगा और दोबारा कभी नहीं आएगी, लेकिन वो एक बार फिर मेरे पास आई तकरीबन 40 दिन के बाद। सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैंने सोचा नाराज हो गई, इतनी गुस्से वाली जर्नलिस्ट कभी नहीं देखी।
क्या आज हम शहीद अब्बास बाबाई के बारे में बात कर सकते हैं?
मैं चाहती हूँ तुम्हारे बारे में बात करें। बताओ, शहीद बाबाई पर तहकीक क्यों कर रही हूँ?
इसके पीछे मेरी कुछ जाती वजूहात हैं।
अगर तुम मेरे सवालों का जवाब इसी तरीके से देना चाहती हो तो मेरे पास भी बात करने की कोई वजह नहीं है।
देखिए, मैं किसी भी सरकारी इदारे के लिए काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक पब्लिशर की पेशकश थी, फिर मुझे भी उसमें थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी होने लगी।
तुम समझी नहीं, मैंने तुमसे ये सवाल किया है, तुम क्यों शहीद बाबाई के बारे में किताब और सीडी छापना चाहती हो? नहीं पूछा कि किसके लिए काम कर रही हो।
क्योंकि अब्बास बाबाई ने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना था। एक ऐसे माशरे और हुकूमत में जहां आपके सामने सिर्फ एक रास्ता रखा जाता है और आप उसी पर चलने के लिए मजबूर हो, इस इंसान ने खुद अपने लिए एक रास्ता बनाया, इनकलाब से पहले भी और इनकलाब के बाद भी।
अजब।
मलिहा साहिबा, मैं कुछ ही महीनों में इस मुल्क से जा रही हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे समाजी आजादी मिले, ऐसी जगह जहाँ मैं खुलकर दिल की बात कर सकूँ। क्या इतना काफी है? अब पहचान लिया मुझे? मेरा सिर्फ एक ही मकसद
हम
है।
हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब्बास भी ऐसा नहीं चाहते थे। मेरे शौहर ने अपनी जान एक ऐसी सरजमी के लिए दी जिसे तुम लोग दबा के रखने वाली समझती हो। वो उन सभी चीजों को सही समझता था जिनकी तुम मुखालिफ हो।
सही, पर हम इस मौजू पर बैठ कर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। शहीद को आपके शौहर होने के बहाने आप अपने नजरियात उनके नाम से पेश ना करें।
तुम्हारी बातें सिर्फ लफाजी हैं, हम एक दूसरे की जबान नहीं समझते।
आप क्या आप जानती हैं कि मैं दोबारा आपके पास क्यों आई हूं? अगर आप जवाब देना नहीं चाहती तो मैं चली जाती हूँ। हमारी इस मुलाकात का नतीजा ये होगा कि सही है कि आप शहीद बाबाई की बीवी हैं, लेकिन शायद वो आपको बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि आप दोनों में बहुत फर्क है।
मुझे मनाने के लिए बात की आखिर में तुमने सही तरीका नहीं चुना।
मुझे यकीन है कि अब्बास बाबाई लोगों को इतना एहतराम और इज्जत देते थे कि कम से कम उनकी बात सुन लेते। मुद्दत से मैं कई चीजों के बारे में शक की शिकार हो गई हूँ, यहाँ तक कि मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं कि कुछ लम्हे बाद मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा है कि मैं इस जिंदगी से क्या चाहती हूँ, मैं क्यों यहाँ से जाना चाहती हूँ। हफ्ते पहले मैं जिस हवाई जहाज में सफर कर रही थी उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई जहाज क्रैश होने वाला था। आपके शौहर की यादगार में किसी ने उनसे नकल किया था कि पायलट अपने खून की कीमत लेते हैं। हर परवाज के शुरू में उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता है कि जमीन पर जिंदा लौटेंगे या नहीं। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये एहसास किया कि ये तजुर्बा कितना अजीब है, यानी कि हर बार